ऐसे युग में जहाँ सूचना प्रकाश की गति से चलती है, सच और झूठ में अंतर करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। चाहे इसे झूठी खबर, गलत सूचना या दुष्परिणाम के रूप में लेबल किया जाए, प्रभाव एक ही रहता है, यानी वास्तविकता का विरूपण, जो आपकी राय को प्रभावित कर सकता है, विश्वासों को आकार दे सकता है और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की श्रृंखला के इस अंश में आज हम बात कर रहे हैं इसी जटिल विषय पर, यानी इसकी उत्पत्ति, गलत सूचना के पीछे के तंत्र और समाज पर इसके संभावित प्रभाव। गलत सूचना हमारी बढ़ती डिजिटल दुनिया में एक वास्तविक चुनौती पैदा करती है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? RMIT विश्वविद्यालय में स्थित एक तथ्य जांच इकाई RMIT फैक्ट लैब की एसोसिएट निदेशक सुशी दास बताती हैं।
So misinformation is basically incorrect information that people pass on without realizing that it's incorrect. Disinformation is false information that people deliberately create to mislead other people, and they might do this for a joke, or they might do it to push a political agenda, or they might do it to somehow make money through clicks.
सुशी दास और उनकी टीम जैसे तथ्य जांचकर्ता यानी फैक्ट चेकर्स उन पोस्ट की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की समीक्षा करते हैं जिनमें गलत सूचना या दुष्प्रचार हो सकता है। फिर वे उस सामग्री के सच को जानने के लिए गहन शोध करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सटीक जानकारी जनता के साथ साझा की जाए। सुश्री दास ऑस्ट्रेलिया में गलत सूचना और दुष्प्रचार के मिश्रण की पहचान करती हैं। वो कहती हैं कि मौजूदा समाचारों की सुर्खियां अक्सर सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाती हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा युद्ध स्थितियों में बहुत सारी गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार हैं। वित्तीय घोटाले और स्वास्थ्य संबंधित गलत सूचनाएं भी हैं।
For example, at the moment there's the war between Russia and Ukraine, so there is misinformation and disinformation around that war. There is another war in the Middle East, so we've got the Palestine and Israel situation, and there's a lot of misinformation and disinformation around that too. We're also seeing regularly financial scams, health-related misinformation.
Queensland University of Technology में डिजिटल मीडिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर टिमोथी ग्रहम का कहना है कि सोशल मीडिया झूठी खबरें और गलत सूचना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन जुड़ाव और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर सामग्री को अनुकूलित करने के लिए एल्गोरिज्म का उपयोग करते हैं।
Content will come across people's feeds that they find irresistible. Humans are sort of hardwired and socially and emotionally set up for, you know, really emotive, media-rich content that may not necessarily be factual. And I think platforms will tend to boost and promote content that's getting immediate reactions, like really bursty reactions from people. And people are very quick to share stuff that makes them feel something strongly, whether it's funny, whether it's, you know, something really negative.
गलत सूचना विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनजानी गलतियाँ, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, सनसनीखेज और जानबूझकर राजनीतिक, वैचारिक या आर्थिक हेरफेर। षड्यंत्रों में अक्सर गुप्त साजिशों के बारे में विस्तृत आख्यान शामिल होते हैं। इसके विपरीत, गलत सूचना में झूठी या भ्रामक जानकारी का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल होता है, जिसमें षड्यंत्रकारी तत्व शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए, RMIT फैक्ट लैब टीम ने एक साजिश थ्योरी पर शोध किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि कपड़ों में टैग की जगह लेने वाले QR कोड लोगों को ट्रैक करने और नियंत्रित करने का एक प्रयास है, लेकिन ये غلط ہے.
This is wrong. It's incorrect. These codes tell you the details about the item, where it was made, whether it was made ethically, washing instructions, fabric details. But of course, there are people arguing that these are all about tracking you.
Sydney sthit vyavahar yani behavioral scientist Dr. Darren Copping ke anusar bhasha ki shuruaat se hi galat suchnaen maujood rahi hain. हालांकि अब ये महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव वाला एक अधिक प्रचलित मुद्दा है. अतीत में लोगों को अपने तथ्य, सच्चाई और विश्वास अपने स्थानीय समुदाय, परिवार या संस्कृति से मिलते थे. आजकल हमें दुनिया भर और विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है. डॉक्टर कोपित कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोग फर्जी लेख साझा करने के मामले में दुनिया के सबसे खराब लोगों में से हैं. 80% ऐसे लेख साझा करेंगे जिन्हें वे भी संदिग्ध मानते हैं. तो वो स्पष्ट रूप से उस मुद्दे को जटिल बना रहा है जिसका हम सामना कर रहे हैं, यानी फेक न्यूज़ और गलत सूचना.
Apparently, according to a University of Canberra study, Australians are among the worst in the world for sharing dodgy articles. 80% will share an article that they even think is dubious. So that is obviously compounding the issue that we're facing with fake news and misinformation.
Galat suchna ka prasar samajik, rajnitik aur vyaktigat aakhyanon par mahatvapurn prabhav dal sakta hai. Dr. Copping ka tark hai ki हम पूरी तरह से सुरक्षा और नियंत्रण की भावना चाहते हैं. हम उस अनिश्चितता को मिटाने के लिए प्रेरित रहते हैं. झूठी खबरों या गलत सूचना के प्रति हमारे आकर्षण के अन्य कारण हैं पुष्टिकरण पूर्वाग्रह और झूठी खबरें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक. डॉक्टर कोपिन बताते हैं कि उदाहरण के लिए यदि हम एक एंटी वैक्सीन समूह से संबंधित हैं तो हमें एंटी वैक्सीन जानकारी की खोज करने की संभावना है और कम से कम यही हमारे दिमाग में रहता है. और जो चीज़ें हमारे साथ चिपकी रहती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं, वो हमारे पूर्व के विचार को साबित और मजबूत करती हैं. इसीलिए हम और अधिक चरम और ध्रुवीकृत होते जा रहे हैं. जबकि जब आप किसी के आमने सामने होते हैं तो आप उसके व्यवहार से जान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता.
If we belong to, say, an anti-vax group, then we're likely to search for anti-vax information, or at least that's what sticks in our brain. And the things that stick with us are things prove and reinforce our pre-existing beliefs. So we just get more and more extreme and polarized. The last one is fake news now can look professional when you're looking at it online, whereas when you're with somebody face to face, you can tell from their furtiveness or their weird demeanor or sweaty palms, you might inform us that they're untrustworthy or what they're saying isn't to be believed.
आजकल गलत सूचनाओं के प्रसार को देखते हुए समाचारों को पहचानने और सत्यापित करने का कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है. इसीलिए सुशीदास वास्तविक समाचारों को झूठे समाचारों से अलग करने के लिए अपनी मुख्य शीर्ष रणनीति साझा करती हैं. वो कहते हैं कि आप बस कुछ कीवर्ड से एक नए टैब में उनकी खोज करें कि क्या कोई उस विषय पर पहले से ही एक कोई लेख या फैक्ट चेक लेख लिखा जा चुका है. डॉक्टर कोपिन समाचार और अविश्वसनीय जानकारी को ऑनलाइन साझा करने से पहले थोड़ा ध्यान देने का सुझाव देते हैं कि क्या इसे दोहराना सही है. यदि आपको पक्का नहीं है तो फॉरवर्ड या साझा नहीं करें.
Stop and think, would I repeat this or would I say this to somebody's face in public? And if you're not sure, then please don't forward and share things because you're contributing to a multiplier effect of misinformation. And secondly, be wary of your own search term biases.
जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, गलत सूचनाओं का प्रसार भी बढ़ता जाता है. प्रोफेसर टिमोथी ग्रैम बताते हैं कि इस बदलती डिजिटल दुनिया में हमें भविष्य में किन चुनौतियों का अनुमान लगाना चाहिए.
I think one of the biggest challenges that generative AI pose is that these AI can produce content that at least at first glance appears to be authored by a human and is quite convincing. And this is not only text, but obviously images as well. And so a real challenge that's happened is that we just have a deluge of AI-generated content that's, you know, kind of mixing in, and it's becoming more and more complicated to just keep up with how much of this is a factual image or an authentic image or an authentic piece of text versus something that's not.
आज की गलत सूचना की दुनिया में सूचित रहना महत्वपूर्ण है. सुशी दास के अनुसार झूठी सूचना के प्रसार से निपटने का एक प्रभावी तरीका आदरपूर्ण संवाद करना, अपमान करने से बचना और समय के साथ लगातार तथ्यात्मक जानकारी को प्रस्तुत करना और जानना. ये समझना आवश्यक है कि परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है.